नमस्कार भारत, रविवार 4 अक्टूबर, मैं हूं वंदना। बिहार में आज लालू नीतीश अमित शाह की रैलियां और बैठकें, तेज हुई चुनावी जंग।
नीतीश और लालू के शासन में बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य बनाकर मित्रों रख।
अफगानिस्तान में अमरीकी सेना ने माना कुंदूज शहर में किया था हमला, जहां पास के अस्पताल में मारे गए 19 लोग, लोगों में नाराजगी। मिलवाएंगे 14 बार के विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन पंकज आडवाणी से।
मैं जब खेलता तो मैं ये कुछ सोचता नहीं हूँ रिकॉर्ड के बारे में, मुझे सिर्फ अच्छा लगता है कि मैं गेम खेल रहा हूँ और जस्ट लाइक एन आर्ट रियली, तो मैं अपने आप को एक एक्चुअली आर्टिस्ट की तरह मानता हूँ। मैं
होंगी और भी खबरें, लेकिन सबसे पहले सुनिए प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, अमल चौधरी से। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने वादा किया है कि प्रदेश में एनडीए की सरकार बनने पर प्रथम श्रेणी से 10वीं और इंटर की परीक्षा पास करने वाली 5,000 छात्राओं को मेरिट के आधार पर स्कूटी दी जाएगी तथा उन्हें उसे चलाने के लिए अगले 2 साल तक पेट्रोल की राशि भी मिलेगी। बांका, भागलपुर और बेगूसराय जिलों में चुनाव प्रचार के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ये बात कही। अमेरिका में कुछ दिन पहले ओरेगॉन कॉलेज में 9 लोगों की हत्या करने के बाद 26 वर्षीय क्रिस हार्पर मर्सर ने खुद को गोली मार ली थी। डगलस काउंटी के शेरिफ जॉन हैनलिन ने बताया कि शव की जांच करने वाले डॉक्टर ने मौत का कारण आत्महत्या बताया है। पहले खबर आई थी कि गोलीबारी के बाद पुलिस मुठभेड़ में उनकी मौत हो गई थी। एक प्रेसवार्ता के दौरान अधिकारियों ने बताया कि क्रिस उसी कॉलेज में पढ़ते थे जहां उन्होंने गोलीबारी को अंजाम दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि क्रिस के घर में जांच करने पर वहां से 14 हथियार भी बरामद हुए थे। नाइजीरिया के सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि राजधानी अबूजा में हुए 2 धमाकों में 13 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को हुए इन धमाकों में कम से कम 40 लोग घायल हुए थे। पहला धमाका कूज स्थित एक पुलिस स्टेशन के पास हुआ, वहीं दूसरा धमाका न्यान्या स्थित बस स्टॉप पर हुआ था। कूज जनरल अस्पताल की मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर तारबुंदे एक भी कहती हैं कि शुक्रवार से इस धमाके से जुड़े 16 लोग अस्पताल आ चुके हैं। उन्होंने बताया, शुक्रवार रात 9:30 बजे के बाद से हमारे पास इससे जुड़े घायल आ रहे हैं। तब से लेकर अभी तक हमारे पास कुल 16 घायल आ चुके हैं। इनमें 3 बच्चियां, 2 महिलाएं और 1 बच्चा भी शामिल है। कूच जनरल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर तारबुंदे एगबी, शुक्रवार को यह दोनों धमाके स्थानीय समय अनुसार रात 10:10 की से कुछ ही देरी के अंतराल में हुए थे। सऊदी अरब में हज के दौरान हुई भगदड़ में मरने वाले भारतीयों की संख्या 58 तक पहुंच गई है। भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि 78 भारतीय अब भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। मक्का में पिछले महीने शैतान को कंकड़ मारने की धार्मिक परंपरा के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें वहां पहुंचे करीब 770 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे में 800 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए थे। अमेरिका के दक्षिणी कैरोलिना में भारी बारिश के चलते वहां बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिसके बाद राष्ट्रपति बराक ओबामा ने वहां आपातकाल की घोषणा कर दी है। पिछले एक हफ्ते से यहां बारिश हो रही है, लेकिन तूफान जोआक्विन के आने की आशंका के चलते स्थिति और भी अधिक खराब हो गई है। कैरिबियन में यह तूफान जोर पकड़ रहा है और उसे तूफान की 4थी श्रेणी में रखा गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में आप सबका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप bbchindi.com के साथ साथ मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वंदना। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार की सरगर्मी जोरों पर है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह आज बिहार में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, तो लालू और नीतीश भी रैलियां कर रहे हैं। अमित शाह ने कल ऐलान किया था कि एनडीए बिहार में जंगलराज पार्ट 2 की वापसी नहीं होने देगा। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल चुनाव प्रचार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पटना से मनीष शांडिल्य की रिपोर्ट।
एनडीए और महागठबंधन के लिए नाक का सवाल बन चुका बिहार चुनाव का प्रचार हर बीतते दिन के साथ जोर पकड़ता जा रहा है। लालू और नीतीश एक दिन में अलग अलग कई सभाएं कर रहे हैं। लालू आज जहां 7 सभाएं करेंगे तो नीतीश 4 जगह खुद के लिए जनता का समर्थन मांगेंगे। साथ ही आज भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मुजफ्फरपुर में 11 जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वे बीते कुछ दिनों से बिहार में ही डेरा डाले हुए हैं। कल पटना में 6 जिलों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा,
नीतीश और लालू के शासन में बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य बनाकर मित्रों रख 15 साल का लालू का जंगल राज, जिसमें बिहार में डकैती, विरोधी, खून, अपहरण, बलात्कार, रोजमर्रा के दंगे और इसके कारण पूरा बिहार तहस।
इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कल अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने भागलपुर के कहलगांव और गया के वजीरगंज में सभाएं की। दोनों जगह उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला।
खोखले वादों पर बनी मोदी सरकार चुनाव के दौरान वादे कर रही, क्या अभी तक इसमें से एक भी वादा पूरा किया गया? बिल्कुल नहीं।
चुनावी सभाओं के अलावे कल राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू का बीफ पर दिया एक बयान भी चर्चा में रहा। लालू ने कल सुबह अपने अंदाज में कहा था कि हिंदू बीफ नहीं खाते हैं क्या?
तो खाता है, हिंदू में नहीं खाता क्या? जो बाहर जाता है बीफ खा रहा है कि नहीं? हिंदुस्तान में भी तो बीफ खा रहा है, अपने को हिंदू कहने वाला भी तो खा रहा है। जो मांस खाता है उसको गाय आप बकरा से क्या फर्क है भाई? ये तो कम्युनलाइज कर रहा है।
बीफ पर दिए लालू के बयान के आधार पर भाजपा के कई नेताओं ने लालू पर हमला बोला है। भाजपा के हमले के बाद लालू ने सफाई दी है कि बीफ का मतलब गौमांस नहीं होता है। इस बीच सियासी दलों द्वारा अपने वादों के जरिए मतदाताओं को लुभाने का सिलसिला जारी है। कल जीतनराम मांझी ने अपने पार्टी के घोषणा पत्र में निजी क्षेत्र में आरक्षण देने सहित कई बड़े छोटे वादे किए।
हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में इस बात को अंकित किया है कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था हम लोग लागू करेंगे।
अभी कई दलों का घोषणा पत्र आना बाकी है। बिहार के लोगों को इंतजार है कि इन दलों के पिटारे में उनके लिए क्या कुछ होगा। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
तो बिहार में 12 अक्टूबर को है पहले चरण का मतदान और उससे पहले वाक युद्ध हुआ तेज। नोएडा के दादरी इलाके के बिसाहड़ा गांव के अखलाक अहमद की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इनमें से एक स्थानीय नेता का बेटा है। अखलाक की मौत को लेकर राजनीति का दौर भी जारी है। शनिवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिसाहड़ा गाँव का दौरा किया। केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को भी पीड़ित परिवार से मिलने की नसीहत दे डाली। रिपोर्ट के साथ हैं वात्सल्य राय।
दादरी के बिसाहड़ा गांव में भीड़ के हाथों मारे गए अखलाक अहमद के परिजन को ढांढस बंधाने के लिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं पुलिस भी इस मामले को सुलझाने और अभियुक्तों को पकड़ने के लिए सक्रियता दिखाने का दावा कर रही है। नोएडा पुलिस ने शनिवार को इस मामले में 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। शिवम और विशाल नाम के ये 2 शख्स इस मामले में मुख्य अभियुक्त बताए जा रहे हैं। हालांकि नोएडा के SSP किरण एस ने BBC से कहा कि दोनों आरोपियों की इस घटना में क्या भूमिका थी, इसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा,
6 लोग अरेस्ट हो गए थे, वी हैव अरेस्टेड 2 मोर एंड वी आर इंट्रोगेटिंग देम। मुख्य अभियुक्त की देखिए, अभी 10 लोगों के खिलाफ FIR हुआ है। इसमें एक जो जरूर यहाँ के लोकल नेता का लड़का है, पर उसमें लोकल नेता का क्या इन्वॉल्वमेंट है और इस लड़के का किसी के गाइडेंस है, इस संबंध में विवेचना कर रहे हैं। मौके पर स्थिति सामान्य है। पीड़ित जो लड़का हॉस्पिटल में है, उसकी इलाज चल रहा है, उसकी कंडीशन डॉक्टर वगैरह देख रहे हैं।
बीते सोमवार बीफ खाने के संदेह में अखलाक अहमद की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। अखलाक अहमद के घर पर हुए भीड़ के हमले में उनका बेटा घायल हो गया था। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने का भरोसा देते हुए मुआवजे की रकम को 20 लाख रुपए कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया,
उनके साथ मुख्यमंत्री जी ने इंसाफ का की घोषणा की है और उसकी जाँच हो रही है। दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कितने भी बड़े राजनीतिक दल का उन्हें संरक्षण प्राप्त हो।
उधर शनिवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी बिसाहड़ा गांव पहुंचे और अखलाक के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर इस मुलाकात की जानकारी दी। राहुल ने घटना पर अफसोस जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि ये बेहद दुखद है कि बरसों में बने विश्वास और समरसता को नफरत की राजनीति ने तबाह कर दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी शनिवार को बिसाहड़ा गांव का दौरा किया। पहले केजरीवाल और उनके साथ पहुंचे आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को गांव के बाहर ही रोक दिया गया। इसके बाद केजरीवाल ने ट्विटर पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि हमें पुलिस और प्रशासन ने रोक दिया, कल महेश शर्मा और ओवैसी को नहीं रोका गया। बाद में केजरीवाल गांव पहुंचे और अखलाक अहमद के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर हो रही राजनीति की आलोचना की।
पार्टियां हिंदू और मुसलमानों के बीच में जहर घोल के एक पार्टी हिंदुओं को अपना वोट बैंक बनाना चाह रही है, एक पार्टी मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाना चाह रही है, ये बिल्कुल गलत है।
बाद में केजरीवाल ने ट्वीट करके इस मामले में प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, कई नेता दादरी का दौरा कर चुके हैं लेकिन प्रधानमंत्री अब तक चुप हैं। उधर बिसाहड़ा गांव के लोगों ने नेताओं के दौरों और मीडिया की मौजूदगी पर सवाल खड़ा किया। कुछ मीडिया कर्मियों पर हमले की खबरें भी आईं, लेकिन एसएसपी ने ऐसी खबरों की जानकारी होने से इनकार किया है।
तो पीड़ित परिवार के लोग आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलेंगे और ये रिपोर्ट सुना रहे थे वात्सल्य राय। और अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अफगानिस्तान का कुंदूज शहर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में है, जहां एक अस्पताल पर हुई बमबारी में कम से कम 19 लोग मारे गए हैं। अब अमरीकी सेना ने माना है कि उसने कुंदूज के उस इलाके में हवाई हमले किए थे जहां पास ही में यह अस्पताल था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संस्था ने कहा है कि ये घटना माफी लायक नहीं है। पूरा ब्यौरा जुटा कर लाए हैं अमल चौधरी।
कुंदूज के अस्पताल में हुए हमले पर अमरीकी रक्षा मंत्री ने कहा है कि मामले की पूरी जांच हो रही है। वहीं मेडिकल चैरिटी मेडिकल साइंस फ्रंटियर्स MSF के अनुसार इस हमले में उसके 7 मरीजों की मौत हुई है और 12 कर्मचारी घायल हुए हैं। इस हमले में करीब 37 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय का कहना है कि अस्पताल में कुछ चरमपंथी छिपे हुए थे। मंत्रालय के प्रवक्ता सादिक सिद्दीकी ने कहा,
10 to 15 tourists were hiding in the hospital last night.
अस्पताल में 10 से 15 आतंकी पिछली रात से छिपे हुए थे। उन सभी को खत्म कर दिया गया है, लेकिन इस हमले में हमने कुछ डॉक्टर भी खो दिए। भविष्य में हम इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे कि डॉक्टरों को सुरक्षित रखा जाए, जिससे कि वो अपना काम आराम से कर सकें। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता सादिक सिद्दीकी। वहीं इस हमले को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त ने दुखद और अक्षम्य करार दिया। उन्होंने कहा, अगर ऐसा जानबूझकर किया गया है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। उनके प्रवक्ता रूपर्ट कॉलविल ने BBC को बताया कि अगर अस्पताल में कथित तौर पर चरमपंथी मौजूद भी थे तब भी इस हमले को सही नहीं ठहराया जा सकता।
It is a hospital. It's full of medical staff and civilian, you know, wounded people.
ये एक अस्पताल है, इसमें डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, घायल और बीमार लोग समेत आम लोग भी मौजूद थे। ऐसे में ये सेना की जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर वो ऐसा कोई हमला कर रहे हैं तो वहाँ मौजूद आम लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। भले ही उसके आसपास सशस्त्र चरमपंथी मौजूद रहे हों, लेकिन फिर भी लोगों की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्चायुक्त जेद राद अल हुसैन के प्रवक्ता रूपर्ट कॉलविल। वहीं MSF ने कहा कि इस विवाद से जुड़े सभी पक्षों को इससे पहले कई बार अस्पताल का स्पष्ट ठिकाना बताया गया था। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि गठबंधन सेना ने इस हमले के लिए माफी मांगी है। हालांकि तालिबान ने अपने किसी भी सदस्य के वहां होने की बात से इनकार कर दिया है।
तो कुंदूज के अस्पताल पर हुए हमले को लेकर काफी नाराजगी है और ब्यौरा जुटा कर लाए थे अमल चौधरी। कार्यक्रम में अब बारी है बात करने की उस हस्ती के बारे में जो इस हफ्ते चर्चा में रही। इस बार मिलिए भारत के बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी से। उन्होंने हाल ही में एडिलेड में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है और ये पंकज आडवाणी का 14वां विश्व खिताब है। उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विदित मेहरा ने।
आप में से कईयों ने पूल या बिलियर्ड्स खेलने के लिए 100 रुपए पर घंटा या 150 रुपए पर घंटा दिए होंगे, पर ये जनाब बिलियर्ड्स और पूल के चैंपियन हैं। वेलकम है जी आप सबका बीबीसी न्यूज मेकर्स में, मैं हूँ आपके साथ विदित, और जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने अभी रिसेंटली IBSF यानी द इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन की वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीत ली है, और इसी के चलते वो बने हैं हमारे बीबीसी न्यूज मेकर। ये हैं इंडिया के बिलियर्ड्स प्लेयर पंकज अडवाणी। पंकज, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और वर्ल्ड टाइटल नंबर 14 आपने जीता है अपने लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि कैसी फीलिंग है 14 वर्ल्ड टाइटल जीतने के बाद?
बहुत ही अच्छा लग रहा है इस समय, क्योंकि बहुत ही मेहनत किया मैंने इस टाइटल को अचीव करने के लिए, और जब भी मैं जीतता हूँ तो मेरी फैमिली को भी बहुत खुशी होती है, और जिन जिन जो जो लोग ने सपोर्ट किया मुझे वो भी बहुत खुश होते हैं कि चलो इन्होंने जो उसको जो सपोर्ट मिला है और जो मेहनत किया है वो फाइनली उसका फल मिल रहा है।
और आपके नाम पे इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं कि मैं क्या बोलूं, मतलब 2014 में आप वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ विनिंग वर्ल्ड टाइटल्स इन बोथ बिलियर्ड्स और स्नूकर्स, दोनों ही फॉर्मेट में ये रिकॉर्ड आपके नाम पर है। ऐसा कोई रिकॉर्ड जो आप पंकज अडवाणी बनाना चाहें अब इतने सारे अवार्ड्स के बाद?
एक्चुअली यू नो विदित, मैं जब खेलता हूँ तो मैं ये कुछ सोचता नहीं हूँ रिकॉर्ड्स के बारे में। मुझे सिर्फ अच्छा लगता है कि मैं गेम खेल रहा हूँ, और जितना हाई लेवल पे खेल सकूँ उतना ही खुशी आती है मुझे। तो मैं कभी ये सोचता नहीं हूँ कि चलो एक नंबर अभी यहाँ तक पहुँच गया तो इसको और इम्प्रूव करना है या इस रिकॉर्ड को ब्रेक करना है। मैं सिर्फ यही सोचता कि मुझे अपना बेस्ट देना है, और जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से मुझे खेलना है, और यू नो इट्स जस्ट लाइक एन आर्ट रियली। तो मैं अपने आप को एक एक्चुअली आर्टिस्ट की तरह मानता हूँ।
पीटर गिलक्रिस्ट की बात करते हैं जिनको आपने हराया इस टूर्नामेंट में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि कैसा लग रहा था पीटर गिलक्रिस्ट के साथ खेलने पे, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही आप उनसे एक टूर्नामेंट हारे।
एक्चुअली जो ये वर्ल्ड चैंपियनशिप जो खेली जाती है वो दोनों फॉर्मेट्स में हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक शॉर्ट फॉर्मेट होता है और एक लॉन्ग फॉर्मेट होता है। और जो शॉर्टर फॉर्मेट में था उसमें मैंने उनके साथ मैं हारा फाइनल में, और एक हफ्ते के बाद मुझे वापस सेम लॉन्ग फॉर्मेट में हम लोग दोनों फाइनल में पहुंचे। तो मुझे थोड़ा सा डर था, पर एट द सेम टाइम मुझे लग रहा था कि अभी इस बार मैं जान लगा के खेलूंगा, और बहुत डिटर्मिनेशन के साथ यू नो मैंने अप्रोच किया मैच को और बहुत पॉजिटिव खेला। तो और एक यू नो जो एक कॉन्फिडेंस रहता है जीतने का वो मेरे अंदर आ गया, और फिर बहुत अच्छा खेला दूसरे फाइनल में। तो इट वॉज आई वुडंट से रिवेंज बट स्वीट विक्ट्री, बिकॉज आई जस्ट लॉस्ट हिम 1 वीक अर्लियर, क्योंकि वो बहुत टॉप प्लेयर है और बहुत ही अच्छे प्लेयर रह चुके हैं और बहुत सारा टूर्नामेंट जीत चुका है, तो बहुत ही अच्छा लगा उनको हरा के।
अगर आपसे मैं बिलियर्ड्स और स्नूकर के बारे में, जो भारत में एक मानसिकता है कि बहुत नीश और पॉश गेम होता है ये, काफ़ी ज़्यादा मतलब इसे बहुत एटिकेट के साथ खेला जाता है और देखने में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है, इंडिया में अगर स्नूकर और बिलियर्ड्स की अगर हम बात करें तो आपको कैसा लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत सारे प्लेयर्स और जुड़ेंगे इसके साथ या नए नए लोग?
मेरे ख्याल से जो पहली जो चीज़ है, ये जो लोग बोलते हैं कि एक नीश स्पोर्ट है या एलिटिस्ट स्पोर्ट है, ये मिसकंसेप्शन है। इनफैक्ट ये जो स्पोर्ट है इसमें इतना इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्पोर्ट्स है यू नो टेनिस, बैडमिंटन, इवन क्रिकेट, जहाँ पे आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है और उसके बाद भी यू नो अपॉर्चुनिटीज मिलते नहीं है। तो आई अंडरस्टैंड कि फैसिलिटीज के लिए ऑफकोर्स बिलियर्ड्स स्नूकर में सिर्फ आपको क्लब की मेंबरशिप की जरूरत है, या अभी तो फिर एटलीस्ट सिचुएशन बेटर हो गया कि क्लब स्पोर्ट्स मेंबरशिप दे रहे हैं अगर आप टैलेंटेड हो बिलियर्ड्स स्नूकर में या किसी भी स्पोर्ट में। एक तो चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आई डोंट थिंक इट्स एन एलीट स्पोर्ट, लेकिन हाँ जो लुक है हमारा, जो हम लोग वेस्ट कोट पहनते और ड्रेस कोड है, उसमें थोड़ा बहुत लगता है कि चलो ये बहुत क्लासी गेम है और यू नो जो अमीर लोग हैं वो खेलते हैं, लेकिन ऑल ऑफ अस हू अचीव्ड इन इंडिया हैव ऑल कम फ्रॉम मिडिल क्लास बैकग्राउंड्स, एंड आई थिंक यू नो वी फील दैट जो हमारी जो कंपनीज भी है, पेट्रोलियम कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज, वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं इस गेम को। तो इट्स ग्रेट दैट द सिचुएशन इज इम्प्रूविंग।
और मेरा आपसे आखिरी सवाल यही होगा कि इतना सब कुछ आप करते हैं, आप गेम के अलावा और कौन सी सेकंड चीज है जो आपके दिल के बहुत करीब है?
टू बी ऑनेस्ट विदित, मेरी जो नींद है और जो मैं रेस्ट करता हूँ टूर्नामेंट के बाद, वो सबसे मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि हर स्पोर्ट्स पर्सन को, आई एम श्योर दे अग्री विद मी ऑल्सो, को यही पता होता है कि ट्रैवल के बाद और टूर्नामेंट खेलने के बाद वो बहुत टायर्ड हो जाते हैं और उनको अपनी जो स्लीप है वो बहुत वैल्यूएबल होती है। तो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू माई स्लीप वेन एवर आई एम नॉट प्लेइंग। स्पेशली पिछले 2 महीने से मैं ट्रैवल ही करता रहा, इनफैक्ट लास्ट 5 टूर्नामेंट्स आई प्लेड इन द लास्ट 2 मंथ्स, तो बहुत ही ट्रैवलिंग हो गया। तो आई रियली Enjoy my sleep when I come back.
पंकज, आपने बीबीसी से बात की और हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू।
तो ये थे विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन पंकज आडवाणी, जिन्होंने 14 बार ये खिताब जीता है, और खिताब के अलावा इनको अपनी नींद बहुत प्यारी है। तो बिलियर्ड्स की बात तो हो गई, तो इसके बाद सुन लेते हैं बाकी के खेल समाचार भी।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी और महिला युगल वर्ग में नंबर एक सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस ने वुहान ओपन का महिला युगल वर्ग का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में जोड़ी ने रोमानिया की इरीना कैमेलिया बेगू और मोनिका निकोलेस्कू की जोड़ी को 6-2, 6-3 से मात दी। सानिया हिंगिस की जोड़ी इस साल इंडियन वेल्स, मियामी, चार्ल्टन, विंबलडन, अमरीकी ओपन, ग्वांगझू और वुहान ओपन में खिताब जीत चुकी है। उधर जिम्बाब्वे का दौरा कर रही पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तब बड़ा झटका लगा जब हरारे में खेले गए दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर 5 रन से मात दी। इस मुकाबले में जिम्बाब्वे को टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने की दावत मिली, जिसके बाद जिम्बाब्वे ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट खोकर 276 रन बनाए। जिम्बाब्वे के चामू चिभाबा ने 90 और कप्तान एल्टन चिगुम्बुरा ने 67 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान के वहाब रियाज ने 10 ओवर में 63 रन देकर 4 विकेट लिए। बारिश के कारण खेल रुका और इसके बाद पाकिस्तान को जीत के लिए 48 ओवर में 262 रनों का लक्ष्य मिला, लेकिन पाकिस्तान की टीम 8 विकेट खोकर 256 रन ही बना सकी। पाकिस्तान के शोएब मलिक ने नाबाद 96 और यासिर शाह ने नाबाद 32 रन बनाए। उनके अलावा आमिर यामीन ने 62 रनों की पारी खेली। जिम्बाब्वे के तिनाशी परियंगारा ने 44 रन देकर 2 विकेट लिए। इसके साथ ही 3 मैचों के सीरीज में जिम्बाब्वे ने 1-1 की बराबरी हासिल कर ली। उधर भारतीय हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड दौरे पर अपनी लगातार दूसरी जीत हासिल की। कल भारत ने न्यूजीलैंड ए को 2-1 से मात दी। खेल का पहला गोल एसके उथप्पा ने किया, उन्हें 5वें मिनट में ही डी के बाहर से निकिन थिमैया का पास मिला था। भारत के लिए दूसरा गोल भी एसके उथप्पा ने किया, लेकिन खेल के 57वें मिनट में न्यूजीलैंड ए के स्टीफन जेनिस ने मैदानी गोल कर स्कोर 2-1 कर दिया। इससे पहले भारत ने शुक्रवार को भी न्यूजीलैंड ए को 3-1 से मात दी थी।
और अब नजर डाल लेते हैं उन खबरों पर जो आज दिन भर सुर्खियों में रह सकती है।
जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल आज से 4 दिन के भारत दौरे पर आ रही हैं। इस दौरान वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। इस दौरान दोनों नेता क्षेत्र में व्यापार और सुरक्षा की स्थिति सहित द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वार्ता करेंगे। मर्केल इससे पहले 2011 में भारत आई थी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI आज अपना अध्यक्ष का चुनाव करेगा, जिसके लिए एक बैठक आयोजित की जा रही है। मंगलवार को जगमोहन डालमिया की मृत्यु होने के बाद बोर्ड का अध्यक्ष पद खाली हो गया था। अनुराग ठाकुर के अनुसार इस बैठक में BCCI के पूर्व अध्यक्ष शशांक मनोहर को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। शशांक इससे पहले वर्ष 2008 से 2011 के बीच BCCI के अध्यक्ष रह चुके हैं। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज बिहार में होंगी। उन्होंने ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी। इस दौरान वो बिहपुर, रोसादा और समस्तीपुर में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगी। बिहार चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों के बड़े नेता इस वक्त फिलहाल बिहार में रैलियां कर रहे हैं। वहीं इंडियन सुपर लीग मुकाबले में आज FC गोवा का मुकाबला दिल्ली डायनामोज FC से है। ये मैच गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा।
बात कार्यक्रम में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल की खबरों की हो ही चुकी है, तो क्यों ना अब इन सब से अलग सुबह सुबह कुछ सैर सपाटे की बात की जाए। दिल्ली के रहने वाले रोहित और नीतीश चौहान ने एक नई ट्रैवल एजेंसी शुरू की है, जिसमें वो सिर्फ महिलाओं को घुमाने लेकर जाते हैं। इस काम में उनका अनुभव कैसा रहा बता रही हैं इंदु पांडे।
ये दुनिया घूम रही है, ये दुनिया घूम रही है, अंबर नाच रहा है, धरती झूम रही है।
घूमने के बारे में कहते हैं कि जब कोई यात्रा शुरू होती है तो इंसान के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन जैसे ही वो यात्रा करके वापस आता है तो उनके पास एक लंबी कहानी होती है अपने अनुभव की। और ऐसा ही हुआ है इन दोनों के साथ।
तो आपको कुछ दोस्त चाहिए होते हैं घूमने के लिए जिनके साथ आप मजाक कर सकें, जिसके साथ आप गाने गा सकें, जिसके साथ आप शॉपिंग कर सकें, तो हम वो वाले दोस्त बन के रहते हैं उन लोगों।
हमारी मुलाकात हुई रोहित खट्टर और नीतीश चौहान से, जो रहने वाले हैं दिल्ली के। उन्होंने एक ऐसा काम चुना है जिसमें वो लड़कियों के साथ घूमते भी हैं और इसके लिए उन्हीं से पैसे भी लेते हैं।
सोलो वुमेन ट्रैवल इंडिया में उतना ज्यादा अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है लोगों ने।
इट्स अ वेरी ग्रोइंग मार्केट।
तो हमें लगा कि इस सेगमेंट में घुसकर अगर हम लोग ढंग से इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे तो अच्छा पोटेंशियल मार्केट।
और इस मार्केट में अपनी लगी लगाई नौकरी छोड़ करके रोहित खट्टर और नीतीश चौहान आ गए सिर्फ लड़कियों को घुमाने के लिए। महिलाओं के साथ टूर पे जाना, ये विचार जितना आकर्षित करता है उतना ये काम आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं।
ट्रिप्स में जाने के बाद वो होती है फोटो खींचने की, बहुत ज्यादा मतलब ये वाली उंगली में बैंडेड लगानी पड़ती है हमें जब हम उनके साथ जाते हैं, और हमारी कोई फोटोज नहीं होती। रोहित खट्टर नितेश वांगी कोई फोटो नहीं, सिर्फ लड़कियों की फोटो।
इनकी क्लाइंट्स यानी कि इनकी जुगनियां कब और क्या मांग ले उसका पूरा इंतजाम ये दोनों अपने पास रखते हैं।
एक मैम रबर बैंड मांगा था एक बारी, लेकिन लेकिन हम वो भी कैरी करते हैं साथ में, मेडिकल किट, रबर बैंड्स, हेयर बैंड्स, यू नो ऑल दी ईच एंड एवरीथिंग।
दिल्ली की रहने वाली जसप्रीत का कहना है जुगनी के अनुभव को लेकर के,
कमाल का आइडिया लगा कि लड़कियों का ट्रैवल ग्रुप है लेकिन उसे चलाने वाले लड़के हैं। तो फिर मैं उनके साथ सिक्किम गई, फिर सिक्किम के बाद मैं उनके साथ खीर गंगा गई। आई थिंक इट इज अमेजिंग।
मोला मन विच बूटी लाई तू फिर मेरे आज
और इस रास्ते में कई बार कुछ फनी चीजें भी हो जाती हैं इनके साथ। बस फिर क्या है, जिन लड़कियों को घूमने का शौक है वो अपने इन दोनों दोस्तों के साथ चल निकलती हैं एक लंबे सैर पर। कोई भी यात्रा अपने दोस्तों से जानी जाती है, ना कि आपने कितने माइल्स तय किए। इंदु पांडे, बीबीसी दिल्ली।
तो लगता है इंदु पांडे तो निकल गई हैं किसी यात्रा पर, और हम नज़र डाल लेते हैं अखबारों पर और अमल मौजूद हैं समीक्षा करने के लिए।
जी, आज के अखबारों की बात करें तो लगभग सभी अखबारों में दादरी में कथित रूप से गौमांस खाने पर जो हत्या हुई थी उसी की खबरें हर तरफ छाई हुई हैं। और अंग्रेज़ी अखबारों का रुख करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि भाजपा नेता का बेटा बीफ हत्या में पकड़ा गया, और द हिंदू का शीर्षक है भाजपा लीडर का बेटा दादरी मामले में पकड़ा गया। वहीं पायनियर ने शीर्षक दिया है कि पीट पीट कर हत्या करने के मामले में दो को पकड़ा गया, स्थानीय लोगों ने मीडिया पर किया हमला। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है कि नोएडा के गांव में गुस्सा और तनाव। वहीं अगर इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो इसने भी इसी खबर को अपनी मुख्य खबर बनाया है, लेकिन इसका शीर्षक और खबर जो है वो कुछ अलग एंगल पे है। अखबार लिखता है कि पुलिस के अनुसार यूपी के एक होमगार्ड ने लोगों को पिता और बेटे पर हमला करने के लिए उकसाया। और एक्सप्रेस की इस खबर के अनुसार पुलिस ने बयान दिया है कि इस होमगार्ड का पीड़ित के परिवार से कोई विवाद था और उसी ने पुजारी को गौ हत्या की घोषणा करने के लिए कहा था। वहीं अगर हिंदी अखबारों का रुख करें तो यहाँ भी पहले पन्नों पर यही खबर प्रमुखता से छाई हुई है, और जनसत्ता लिखता है होमगार्ड जवान ने रची थी अखलाक के खिलाफ साजिश।
कई कई तरह के आरोप
जी इसमें लगाए गए हैं इनको कहा जा रहा है कि इनका कुछ राइवलरी थी इनके बीच में, रंजिश थी जिसकी वजह से उन्होंने इसको अंजाम दिया, और ये पुलिस ऐसा दावा कर रही है, सभी अखबार ऐसा कह रहे हैं। और हिंदुस्तान हिंदी लिखता है दादरी कांड के मुख्य आरोपी गिरफ्तार, और अमर उजाला ने लिखा है बिसहाड़ा कांड के दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए। वहीं दैनिक भास्कर ने लिखा है कि 1 लाख की हत्या के दो और आरोपी गिरफ्तार। और अन्य खबरों की बात करें तो इसमें इंद्राणी मुखर्जी की खबर है कि उनकी जो तबीयत है वो और अभी तक बिगड़ती जा रही है। और एक और खबर अच्छी है कि दैनिक जागरण में दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा की इस योजना पर जिसपे वो मतलब नाइट लाइफ को प्रमोट करना चाहते हैं।
अच्छी खबर भी
जी जी बिल्कुल एक बिल्कुल है। और लेकिन एक खबर ऐसी है कि जिसमें सोने के दाम बढ़ गए, 660 रुपये बढ़ गए, जिसमें 10 ग्राम सोना 26,810 रुपये प्रति 10 ग्राम जी बिल्कुल 660 रुपये का बिल्कुल हुआ है बंदा।
बहुत बहुत शुक्रिया समीक्षा के लिए। और अब एक बार नजर डाल लेते हैं मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में कुछ दिन पहले ओरेगॉन कॉलेज में 9 लोगों की हत्या करने के बाद 26 वर्षीय क्रिस हार्पर मर्सर ने खुद को गोली मार ली थी। डगलस काउंटी के शेरिफ जॉन हेनलिन ने बताया कि शव की जांच करने वाले डॉक्टर ने मौत का कारण आत्महत्या बताया है। नाइजीरिया के सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि राजधानी अबूजा में हुए 2 धमाकों में 13 लोग मारे गए हैं। कूज जनरल अस्पताल की मुख्य चिकित्सा निदेशक डॉक्टर तारबुंदे एग्बी कहती हैं कि शुक्रवार से इस धमाके से जुड़े 16 लोग अस्पताल में आ चुके हैं। सऊदी अरब में हज के दौरान हुई भगदड़ में मरने वाले भारतीयों की संख्या 58 तक पहुंच गई है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 78 भारतीय अभी भी लापता हैं और उनकी तलाश जारी है। बीबीसी समाचार।
जी तो आज के कार्यक्रम नमस्कार भारत में बस इतना ही। आपसे अगले मुलाकात होगी ठीक 1 घंटे बाद कार्यक्रम विश्व भारती में। आज स्टूडियो संभालने का काम किया था हेमंत कुशवाहा ने। सभी साथियों के साथ मुझे वंदना को दीजिए अनुमति।